दिनभर तारीख 31 मई दिन बुधवार, मैं हूं विनीत खरे। काबुल बम धमाके में 80 की मौत, 350 घायल।
तीन के करीबन मैंने इन लोग इस तरह के व्यक्तियों को देखा, जिसमें से कि एक आदमी का दायां हाथ तो कट कर के नहीं था।
भारत की पहली तिमाही के आर्थिक दर के आंकड़े जारी। कश्मीर पर हमारी विशेष सीरीज में आज मुलाकात पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की वहीदा कुरैशी से।
वहाँ क्योंकि इंडिया को लोग कॉपी करते हैं, उस तरह का माहौल है यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी माहौल है, इस्लामी माहौल के तहत लोग।
सुनेगा उत्तर प्रदेश में दलितों और ठाकुरों के बीच हिंसा पर ग्राउंड रिपोर्ट, और कनाडा में बसे पंजाबी सिखों की राजनीति पर आज का दुनिया जहां। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार वात्सल्य राय से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज हुए जोरदार धमाके में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई। धमाके में 350 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सुबह के वक्त धमाका उस जगह हुआ जहां कई देशों के दूतावास हैं। विस्फोट के असर से आसपास के वाहन तबाह हो गए, कई किलोमीटर दूर तक खिड़कियों के कांच टूट गए। मरने वालों में बीबीसी के एक ड्राइवर मोहम्मद नाजिर भी हैं। बीबीसी के 4 अन्य कर्मचारी घायल भी हुए हैं। तालिबान ने कहा है कि इस हमले में उसकी कोई भूमिका नहीं है। काबुल में हुए धमाके के बाद भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि भारतीय दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। धमाके से जर्मनी के दूतावास को काफी नुकसान हुआ है। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने धमाके की निंदा करते हुए कहा, हमले के पीड़ितों और उनके परिजन के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। ऐसे वक्त में हमारे सामने ये बात और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाती है कि चरमपंथ के लिए सीमाओं के कोई मायने नहीं है। यह हम सभी को निशाना बनाता है, चाहे ये मैनचेस्टर हो, बर्लिन, पेरिस, इस्तांबुल, सेंट पीटर्सबर्ग या फिर आज काबुल हो। दुख की इस घड़ी में और अपनी प्रतिबद्धता को लेकर हम सब साथ हैं। हम सभी चरमपंथ से संघर्ष करेंगे और जीत हासिल करेंगे। ये थे जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि रूसी नौसेना ने सीरिया के पलमारा शहर के करीब इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर 4 क्रूज मिसाइलें दागी हैं। मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया है कि ये ठिकाने शहर के पूर्व में हैं, जहां रक्का से लाए गए हथियारों और लड़ाकों को रखा गया था। मंत्रालय के मुताबिक इस हमले के बारे में रूस ने अमरीका, तुर्की और इसराइल को पूर्व में ही जानकारी दे दी थी। अमरीकी मीडिया में आई रिपोर्टों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है। ट्रंप ने ट्विटर पर जानकारी दी कि वो अगले कुछ दिनों में इस बारे में घोषणा करेंगे। ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान समझौते से बाहर निकलने का वादा किया था। हालांकि हालिया हफ्तों में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने अभी इस बारे में फैसला नहीं किया है। G7 देशों के सम्मेलन में ट्रंप ने समझौते का अनुमोदन करने से इनकार कर दिया था। कार्बन उत्सर्जन में कटौती से जुड़े समझौते पर दुनिया के करीब 200 देशों ने सहमति जताई है। अमरीका के मानवाधिकार कार्यकर्ता बाल विवाह को गैरकानूनी बनाने संबंधी एक विधेयक पर न्यू जर्सी के गवर्नर की ओर से लगाए गए वीटो को लेकर नाराज है। अमरीका में बाल विवाह कानूनी है। 27 राज्यों में शादी की कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं है। हर साल हजारों बच्चों की शादियां होती हैं, जिनमें ज्यादातर लड़कियां होती हैं। अनचेंड एटलास नाम का संगठन गुरुवार को इसके विरोध में प्रदर्शन करेगा। संगठन की संस्थापक फ्रेडी रीस ने कहा,
Governor Christie of New Jersey did something outrageous. He conditionally vetoed a bill that would have ended.
न्यू जर्सी के गवर्नर ने हैरान करने वाला कदम उठाया है। बाल विवाह को समाप्त कर देने वाले विधेयक को उन्होंने सशर्त वीटो किया है। इस विधेयक के पक्ष में जबरदस्त समर्थन था, इसलिए हम इसके विरोध में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम कानून बनाने वालों से कहेंगे कि वो वीटो को दरकिनार कर दें। ये थे एक मानवाधिकार कार्यकर्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक साल 2016-17 की आखिरी तिमाही में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 6.1% रही है। ये आंकड़े आज जारी हुए हैं। साल 2016-17 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.1% रही। बीते साल ये आंकड़ा 7.9% था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में दिनभर आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के दूतावास इलाके में एक गाड़ी में भीषण बम विस्फोट हुआ। इस घटना में अभी तक की जानकारी के मुताबिक कम से कम 80 लोग मारे गए हैं और 350 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सुबह 8:30 बजे का यह धमाका पिछले 5 सालों में काबुल में हुआ सबसे भीषण हमला था। धमाका शहर के जनकाब चौराहे के पास हुआ। घायलों और मरने वालों में ज्यादातर आम नागरिक थे। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि सड़क पर भारी गड्ढा हो गया। कई 100 मीटर दूर खिड़कियां और दरवाजे टूट गए। तालिबान ने इस हमले से इनकार किया है, तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने फिलहाल कुछ नहीं कहा है। काबुल में पिछले महीनों में हुए हमलों में इन गुटों का हाथ रहा है। बीबीसी का कहना है इस हमले में अफगान सेवा के ड्राइवर मोहम्मद नज़ीर की मौत हो गई और 4 पत्रकार भी घायल हो गए। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटनास्थल के पास ही दुकान चलाने वाले सैयद रहमान बताते हैं,
ये
धमाका इतना जोरदार था जिससे हमारी दुकान को बहुत नुकसान पहुंचा। हमारा एक कर्मचारी घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया। मैंने जीवन में इतना भीषण धमाका नहीं देखा। ये थे सैयद रहमान। राकेश भट्ट संयुक्त राष्ट्र में काम करते हैं। धमाका जब हुआ तो वो पास की ही एक इमारत में थे। हमारे साथी राजेश जोशी ने धमाके के ठीक बाद उनसे बात की और उनसे आंखों देखा हाल पूछा।
उस समय जो महसूस होता है, उस समय लगभग ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपके दिल को दबा दिया हो और फिर एकदम से छोड़ दिया हो, यानी जिसको कहते हैं कि बहुत ही दहला देने वाली एक आवाज होती है, और पहले बिल्डिंग हिली और उसके बाद उसका धमाका हुआ, यानी धमाके की आवाज आई, पहले बिल्डिंग हिली, उसके बाद फिर काफी धुआं और इस तरह की एक आग तो लगी हुई थी सामने वाली बिल्डिंग पे। और ये अभी पक्का नहीं पता चल रहा है कि ये शायद एनडीएसजी यहाँ के जो नेशनल डिफेंस सर्विस है यानी फौज का एक इदारा है उसमें ये अभी ये हुआ। हालांकि यहाँ पर ये बहुत कंजेस्टेड एरिया है। और
तो जब धमाका हुआ उसके बाद आपने क्या किया, क्योंकि मुझे जहां तक अंदाजा है आप उस बिल्डिंग के अंदर ही आपको रोक लिया गया था या आप बाहर निकलने को आजाद थे?
मैं बिल्डिंग के अंदर था और बिल्डिंग के अंदर फिर हमें बेसमेंट पे ले जाए एकदम से। हम यहाँ पे ट्रेनिंग यह होती है कि जब भी कोई धमाका हो तो एकदम बेसमेंट पे चले, तो बेसमेंट पे भाग करके गए। हालांकि इसमें 2-3 लोग गिरे भी बेचारे जो नीचे उतर रहे थे। रमजान का महीना है, लोग भूखे भी हैं और डरे हुए हैं।
खिड़की के बाहर झांकने की कोशिश की, आपने कुछ देखा वहां पे कोई धुएं का बगुला उठा, कोई घायलों को या जख्मियों को ले जाते हुए या कोई बॉडी वगैरह कुछ दिखी आपको?
जी, करीबन 3 के करीबन मैंने इन लोग इस तरह के व्यक्तियों को देखा। अब ये पता नहीं है कि वो हमलावर थे या आम आदमी थे, जिसमें से कि एक आदमी का दायां हाथ तो कट करके नहीं था, वो डेथ तो हो ही गई थी उसकी, वो क्योंकि बेजान उधर से जो दिख रहा था। अभी एरिया यहाँ पर तो कॉर्डन ऑफ हो गया है, तो सिर्फ क्या कहते हैं खास ही गाड़ियां यहाँ पर आ रही है। ये जो इलाका है जर्मन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी और थोड़ा दूर के बाद इंडियन एम्बेसी के आसपास भी ये इलाका पड़ता है। एनडीएस का ऑफिस है यहाँ पर और कई मिनिस्ट्रीज हैं, 2-3 मिनिस्ट्रीज हैं।
ये थे राकेश भट्ट। मैंने थोड़ी देर पहले अफगान मामलों के जानकार रहीमुल्ला यूसुफ जई से बात की और मैंने उनसे पूछा कि किसी गुट का इस हमले की जिम्मेदारी न लेना क्या दिखाता है?
जिस किसी ने भी ये हमला किया है उसको ये डर है कि अगर वो जिम्मेदारी कबूल करेंगे तो काफी उनके ऊपर तंकीद होगी और इसका दिफा करना मुश्किल हो जाएगा। तो कोई भी ये नहीं कह रहा कि ये हमला उन्होंने किया है, लेकिन देखना ये है कि पहले इस तरह के हमले किसने किए हैं, किसके पास ताकत है।
ये ऐसे हमले, बड़े हमले जब काबुल के केंद्र में हो रहे हैं जहां पर सुरक्षा की इतनी व्यवस्था है, तो जो अफगानिस्तान में जो सुरक्षा की स्थिति है, सिक्योरिटी सिचुएशन, इस पर आप क्या कहेंगे?
तो यहां पे हमला होने का मतलब ये है कि सिक्योरिटी के हालात जो है वो खराब हो रहे हैं और पूरे अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं कि तालिबान और दाइश की जो ताकत है, जो इलाका उनके कब्जे में है उसमें इजाफा हो रहा है और सरकार जो है उसके कंट्रोल में जो इलाका है वो कम हो रहा है। तो ये खतरनाक बात है और जो फौजी हल निकालने की कोशिश की गई पिछले 16 साल वो कामयाब नहीं हुई।
इसका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों पर कोई असर पड़ेगा, क्योंकि पहले अफगानिस्तान पाकिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि जो नेता हैं तालिबान के वो पाकिस्तान के अंदर हैं।
हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जब भी ऐसा बड़ा हमला अफगानिस्तान में हो जाए तो पहले वो शक करते हैं कि ये तालिबान ने किया है, अब की बार वो तालिबान के ऊपर शक करेंगे। फिर जब तालिबान का नाम आएगा तो वो कहेंगे कि तालिबान के जो अक्सर नेता हैं, कमांडर हैं या हक्कानी नेटवर्क, वो पाकिस्तान में है। फिर पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम आएगा कि पाकिस्तान इनको क्यों नहीं रोकता या इनको क्यों नहीं निकालता। तो ये पहले भी हुआ, अब की बार भी मैं समझता हूँ कि अफगान सरकार शायद ये कहे कि पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करे पाकिस्तान के अंदर।
ये थे पेशावर से अफगान मामलों के जानकार पत्रकार रहीमुल्ला यूसुफ़ज़ई।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
राजस्थान हाईकोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की सिफारिश की है, लेकिन कानूनविद इस पर सवाल उठा रहे हैं। जयपुर से नारायण बारेट।
हाईकोर्ट ने नेपाल का उदाहरण दिया और कहा भारत में भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा ने बुधवार को वकील पूनम चंद भंडारी की जनहित याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए सरकार से गोहत्या पर सजा में सख्ती बरतने और उम्र कैद का प्रावधान करने का मशविरा दिया है। श्री भंडारी ने कोई 7 साल पहले जयपुर में नगर निगम की ओर से संचालित हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौत को लेकर याचिका दायर की थी। श्री भंडारी ने अदालत के निर्णय पर कहा यह निर्णय कोई बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह अदालत की सिफारिश है।
एक तो यह है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो नेपाल में ऐसा किया गया है, तो हाईकोर्ट का मानना था यहाँ भी ऐसा होना चाहिए कि अपने राजस्थान बोवाइन एक्ट बना हुआ है, सजा का प्रावधान है 10 साल तक सजा है। हाईकोर्ट ने कहा इसको बढ़ा करके उम्र कैद किया जाना चाहिए। अब लेकिन सरकार की इच्छा है, मर्जी है, इसको माने या ना माने, ये मैंडेट नहीं है।
अपने अंतिम कार्य दिवस पर न्यायमूर्ति शर्मा ने इस फैसले में गायों की सार संभाल बेहतर करने के कई निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता श्री भंडारी कहते हैं बीजेपी के सत्ता में आने के बाद भी गायों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है।
हिंगोनिया गौशाला जो सरकारी गौशाला है वहाँ पर 50-60 गाय पर डे मर रही थी। नहीं, बीजेपी के आने के बाद कुछ भी नहीं किया, तो आज तक हिंगोनिया गौशाला को जगह संभालते ही नहीं, आकर देखते ही नहीं हो, तो बल्कि उन टाइम में 27,000 गाय मर गई थी, 27,000 गाय मर गए।
अदालत के इस निर्णय पर हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पानाचंद जैन कहते हैं ये नीति संबंधी मुद्दा है, ऐसे मामलों में कोर्ट को दखल नहीं करना चाहिए।
तो ये एक नीतिगत मामला है सरकार का कि किसको करे किसको न करे, स्टेचुरी लॉ नहीं है। तो स्टेचुरी नहीं है तो फिर नीतिगत मामला है, और नीतिगत मामले में जो है कोर्ट को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ऐसा माना जाता है।
सनातन काल से गाय हिंदू धर्म में आस्था का केंद्र रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से राजनीति ने भी गाय में अपनी दिलचस्पी बढ़ा दी है। कोई गाय के इस तरफ खड़ा है तो कोई उस तरफ, लेकिन कोई नहीं जानता गाय खुद क्या सोच रही है। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
आज इस साल की पहली तिमाही की आर्थिक विकास दर की घोषणा की गई और ये पिछले 2 सालों में सबसे कम थी। कई सेक्टर जैसे निर्माण कार्य, व्यापार आदि में गिरावट दर्ज की गई। इसी विषय पर हमारे साथी पंकज प्रियदर्शी ने बात की मुंबई में हमारे बिजनेस रिपोर्टर समीर हाशमी से, और सबसे पहले आज जारी किए गए आंकड़ों के बारे में पूछा।
जो नए आंकड़े आए हैं उसमें 2 आंकड़े आए हैं, एक तो जनवरी से मार्च का आंकड़ा आया है, उस दौरान जो है भारत की GDP 6.1% की बढ़ोतरी हुई उसमें, और फिर एक पूरे साल की आई है, यानी कि अप्रैल 2016 से लेकर मार्च 2017 तक, तो उस दौरान 7.1% की बढ़ोतरी हुई है। तो जो जनवरी से मार्च का आंकड़ा है ये थोड़ा कम रहा है, जो लोगों ने अनुमान ये किया था कि ये तकरीबन 7 के करीब होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। हालांकि ये कम है लेकिन ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल जब भारत ने डीमोनेटाइजेशन किया था, जो नोटबंदी की थी, उसके बाद काफी असर पड़ा था आर्थिक स्थिति पे, काफी जो बिजनेसेस थे उन व्यापार थे उनके पर काफी असर पड़ा था, लोगों के पास कैश नहीं था, नोट नहीं थे, जिसकी वजह से वो कोई चीजें नहीं खरीद रहे थे, या जो बड़ी चीजें खरीदते हैं मार्केट में, चाहे वो गाड़ियां हों या फ्रिज हों या एयर कंडीशनिंग हो, वो सब उसकी बिक्री सबकी कम हो गई थी, तो उसका असर हमको देखने को मिला है। और इसलिए जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये उम्मीद थी कि गिरावट होगी, लेकिन इतनी ज्यादा गिरावट होगी इसका अनुमान लोगों ने नहीं किया था।
पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले और जो आपने फर्स्ट क्वार्टर की बात की, उस क्वार्टर के मुकाबले कितना डिप है ये?
ये अगर जनवरी से मार्च का जो आंकड़ा है, अगर हम इसकी तुलना करें पिछले साल के जनवरी से मार्च के आंकड़े से तुलना करें, तो तकरीबन 1% का ड्रॉप है, 1% का ड्रॉप है, क्योंकि इस बार 6.1% है। पिछले साल इसी दौरान, इसी समय के दौरान, जनवरी टू मार्च ग्रोथ जो थी, GDP ग्रोथ जो थी, वो 7% थी।
किन किन सेक्टर्स में ये गिरावट देखी गई है?
सभी सेक्टरों पर इसका असर पड़ा है, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग ले लें, चाहे आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ले लें, चाहे आप एग्रीकल्चर ले लें, चाहे आप ट्रैवल एंड टूरिज्म ले लें, तो कोई भी आप ये महत्वपूर्ण जो सेक्टर हैं भारत अर्थव्यवस्था के या इकोनॉमी के, उसमें सभी सेक्टरों पे इसका असर पड़ा था। लेकिन अगर आप अब इन व्यापारों से बात करें या इन कंपनी से बात करें, तो उनका ये कहना है कि रिकवरी जो है वो काफी तेजी से हुई है। लोगों को पहले लग रहा था कि नोटबंदी की वजह से इकोनॉमी को रिकवर करने में, यानी अर्थव्यवस्था को रिकवर करने में काफी समय लग जाएगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं है। और इस वक्त जो है व्यापारी जो है काफी खुश हैं, क्योंकि लोग फिर से आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं।
ये थे मुंबई से बीबीसी बिजनेस रिपोर्टर समीर हाशमी। बीबीसी हिंदी सेवा में आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर, मैं हूं विनीत खरे। कश्मीर पर हमारी विशेष सीरीज में आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की वहीदा कुरैशी से करवाते हैं। वहीदा भारत प्रशासित कश्मीर की रहने वाली हैं, पर उनकी शादी पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में हुई। दोनों देशों में तनाव के बावजूद भारत प्रशासित कश्मीर से औरतों के पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के मर्दों के साथ निकाह की मिसालें मिल जाती हैं। ऐसा ही एक रिश्ता बनाने वाली कुपवाड़ा की वहीदा कुरैशी बता रही हैं कि ऐसे रिश्ते ने उनकी जिंदगी को कैसे बदल दिया।
मेरा नाम वहीदा कुरैशी है और मेरी शादी 6 साल पहले हुई थी 2011 में अफाकुल इस्लाम कुरैशी से।
कभी सोचा नहीं था ना, मतलब तब तो मैं पढ़ ही रही थी, फिर अचानक से ये सब हो गया, फिर वैसे कभी सोचा नहीं था इस तरह आने का। फिर यहाँ के मतलब उस तरह से ड्रेसिंग सारा कुछ अलग, रहन सहन भी उधर से थोड़ा मुख्तलिफ है।
तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आई, फिर एक दो साल के बाद फिर मैं वापस गई।
मैं उधर पढ़ती थी ना इंडिया में, मतलब मुंबई में थी, मैं उधर आलिम कोर्स कर रही थी, मदरसे में पढ़ती थी मैं तब। 2004 में गई थी, फिर 2008 में मैं वापस आ गई थी, पूरा 5 साल का कोर्स था, तो फिर मैं आ गई थी 2008 में। फिर उसके बाद हमारे उधर मदरसा था, उधर पढ़ाती थी, फिर इनके अबू गए हुए थे तो फिर मंगनी वगैरह हुई, तो फिर उसके बाद मैं इधर आ गई।
बहुत मुख्तलिफ है उधर का माहौल, यहाँ का माहौल, वहाँ क्योंकि इंडिया को लोग कॉपी करते हैं उस तरह का माहौल है, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी माहौल है, इस्लामी माहौल के तहत ही लोग चलते हैं, तो वहाँ भी बहुत मुश्किल है क्योंकि हर एक गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है लोगों की, मतलब आज़ादी है हर तरफ, आना जाना खुला है, तो उधर थोड़ा मुश्किल हो जाता था थोड़ा, मतलब लोग इतना कभी कभी स्कूल बंद हो जाते थे, कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद हो जाते थे, कि लोगों को बहुत मुश्किल होती थी पढ़ाई करने में भी। तो यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर आसानियाँ हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पर, यहाँ का माहौल भी। बस कभी यही सोचते थे कि शायद इतनी आसानी तो होगी या शायद और आगे आसानियाँ हो जाएंगी और आना जाना लोगों का आसान हो जाएगा, लोग आसानी के साथ आ जा सकेंगे, तो बस यही सोच के। और ये मतलब अपने रिश्तेदारों से मिलने का भी बहुत मन था कि हमारे अपने ही हैं वहाँ पर भी, तो इस वजह से ही मतलब अच्छा लगा था यहाँ पर। फिर मतलब अच्छी सही लाइफ गुजरी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि माँ बाप की कमी महसूस होती है, बहन भाइयों की कमी महसूस होती है, आसानी से हम आ जा नहीं सकते, तो बहुत मुश्किल होता है, कभी कोई दुख होता है, बीमारी होती है, कहीं खुशी होती है, तो इंसान आ जा नहीं सकता। अगर बात हो भी तो माँ बाप बहुत मतलब रोते हैं, दुख होता है उन्हें बात करके, तो इस वजह से बहुत मुश्किल होता है। मतलब इतना दूर भी नहीं है, यहाँ से बहुत करीब है, तो इसमें इतना मतलब इतना कुछ करना पड़ता है कि फॉर्म भरो, ये करो, वो करो, सब कुछ पूरा करो, लेकिन फिर भी कभी नंबर लगते हैं, कभी नहीं लगते, बहुत मुश्किल होता है। मैं तो ऐसे ही चाहती हूँ कि जो कश्मीर में आजकल जितना भी लाशें गिर रही हैं ये सब बंद हो जाए, मुसलमानों पर जो भी जुल्म हो रहा है तो ये सब बंद हो जाए, तो ये मसला जल्द अज जल्द हल किया जाए ताकि लोग आसानी से अपने रिश्तेदारों से मिल सकें, आ जा सकें।
कभी बात नहीं हो पाती, हालात ख़राब हो जाते हैं, तो वो तो उस तरह से होता है कि माँ बाप भी दूर है, तो फिर मैं सोचती हूँ कि शायद करीब ही करीब होना चाहिए लड़कियों को।
ये कहानी थी पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में रह रही वहीदा कुरैशी की। हाल ही में कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन भारत के दौरे पर थे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टिप्पणी की कि कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन सहित जस्टिन ट्रूडो सरकार के 5 मंत्री खालिस्तान समर्थक हैं। उनकी इस टिप्पणी पर बवाल मच गया। मोहनलाल शर्मा दुनिया जहां में कनाडा में बसे पंजाबी सिखों की राजनीति की पड़ताल कर रहे हैं।
दुनिया जहान
सदा सदा
बैसाखी मनाते लोगों की ये आवाजें भारत के अमृतसर, लुधियाना, जालंधर से नहीं बल्कि ये हैं कनाडा के वैंकूवर की।
Hey, have a happy Baisakhi and be safe. Make sure you hold on to your children.
भारत के किसी शहर जैसी ही शोभा यात्रा, वही पंज प्यारे, वही तलवारबाजी और वही गदका। आज कनाडा में बसे भारतीय मूल के लोगों की तादाद 13 लाख से अधिक है। भारत से कनाडा जाकर बसने वाले लोगों में विशेष रूप से पंजाब से जा बसे लोग हैं और इनमें भी विशेष रूप से सिख समुदाय के लोग। कनाडा के कई शहरों के कई इलाकों में कई बार एहसास होता है कि आप लुधियाना या जालंधर में घूम रहे हो। वैंकूवर में रह रहे पत्रकार बक्षिंदर सिंह कहते हैं,
वैंकूवर में एक सबर्ब है सरी जिसमें मैं रहता हूँ, ये शहर ही पंजाबियों का है, दूसरा पंजाब है सरी। हर तीसरा आदमी आपको पगड़ी वाला मिलेगा, हर तीसरा आदमी आपको पंजाबी बोलने वाला मिलेगा। अगर एक लेन में 10 घर हैं तो शायद एक आध दूसरे किसी कंट्री के लोग का हो, नहीं तो बाकी सब पंजाबियों के होंगे, चाहे वो हिंदू हों चाहे सिख हों।
सिखों के कनाडा जाने और वहां बस जाने का सिलसिला दरअसल 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ। उस समय भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहे पत्रकार गुरप्रीत सिंह से मैंने पूछा कि सिख वहां इतने प्रभावशाली कैसे हो गए।
हमें एक बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने मेहनत करके अपनी जगह बनाई है। पॉलिटिकली वो काफी एक्टिव रहे हैं। इंडिया में अभी ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उसी टाइम पर जो है सिख कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आने शुरू हो गए थे। उसकी वजह यह थी कि भारत में कुछ परिस्थितियां ऐसी थी ब्रिटिश राज के चलते, जो लोग खेती बाड़ी पे आधारित थे, कि एक तो लगान वगैरह काफी था, टैक्सेस काफी थे, जिसकी वजह से गुजारा नहीं हो रहा था। सो सिखों के पास 2 तरीके के रास्ते होते थे पंजाब में, कि या तो आप फौज में चले जाएं या बाहर चले जाएं। एक पहलू तो ये है। दूसरा, जो लोग फौजी थे जिनको कभी मौका मिला यहाँ पे गुजरने का, तो उन्हें लगा कि यहाँ की आबो हवा अच्छी है, तो उस टाइम पे ये तय हुआ कि यहाँ पे जाके जिंदगी बसर की जाए। तो यहाँ के जो ब्रिटिश कोलंबिया जहाँ हम बैठे हैं इस टाइम, तो यहाँ पे खास तौर पे जो जितने सिख उस टाइम आने शुरू हुए, ये सारा का सारा ये अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन था। लेकिन जब यहाँ पे आए तो उनको रेसिज्म का सामना करना पड़ा और इसलिए कानून ऐसे बनाए गए कि आप परिवार लेकर नहीं आ सकते, उनसे वोट डालने का हक छीन लिया गया। तो आप जानते हैं कामाकाटा मारू समुद्री जहाज जब यहाँ पे आया 1914 में उसको वापस मोड़ा गया। सो लाला हरदयाल या गदर पार्टी की जब स्थापना होती है तो वैंकूवर में उनको काफी बड़ी सपोर्ट मिलती है और वैंकूवर इलाके से बहुत सारे गदरी थे जिनको फांसियां भी लगी, जिन्होंने उम्र कैद भी काटी। अभी असेंबली में यहाँ पे 7 जो हैं पंजाबी सिख जो हैं एमएलए हैं और पूरे कनाडा की बात करें तो दर्जन से ज्यादा गिनती है।
आज कनाडा में हर स्तर पर भारतीयों की मौजूदगी महसूस की जा सकती है। आज न सिर्फ वो राज्यों में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, बल्कि पहली बार सिख समुदाय के हरजीत सिंह सज्जन देश के रक्षा मंत्री हैं। लेकिन कनाडा के सिख समुदाय का एक और तार भी है जो कि उन्हें अलग खालिस्तान की अवधारणा से जोड़ता है। इस समुदाय का एक गुट खुद को खालिस्तान समर्थक कहता है। जिस तरह से ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 के सिख दंगे भारत समेत पूरी दुनिया में सिखों के लिए मुद्दे हैं, उसी तरह कनाडा में रह रहे सिखों के लिए भी ये बड़े मुद्दे हैं। कनिष्क विमान दुर्घटना, इतिहास का एक काला पन्ना जिसमें मॉन्ट्रियल से नई दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के विमान कनिष्क को 23 जून 1985 को हवा में ही बम से उड़ा दिया गया था। हमले में 329 लोग मारे गए थे, अधिकांश भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक थे। बताया जाता है कि 1984 में स्वर्ण मंदिर से भिंडरांवाले के समर्थक चरमपंथियों को निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में इसे अंजाम दिया गया था। सिख अलगाववादी गुट बब्बर खालसा के सदस्य इस हमले के मुख्य संदिग्धों में शामिल थे। हर साल बैसाखी जैसे मौकों पर आयोजित समारोहों में मारे गए सिख चरमपंथियों को शहीद का दर्जा दिया जाता है और उन्हें याद किया जाता है। बक्षिंदर सिंह कहते हैं,
बैसाखी के मौके पर एक नगर कीर्तन निकलता है, प्रोसेशन होता है, वो उसको परेड बोलते हैं। ये उस परेड में बहुत ज्यादा खालिस्तान का प्रचार होता है, स्टेजेस लगती हैं, लेक्चर होते हैं, नारे लगते हैं। उसमें जिसने कभी भी पगड़ी नहीं बांधी होती वो यहाँ पगड़ी बांध के आता है और पगड़ी का एक खास रंग होता है, ज्यादातर पगड़ियां केसरी होती हैं। तो यहाँ की सरकार, बीसी की सरकार और फेडरल जो गवर्नमेंट है, वो सिखों की उस दिन एक एक किस्म का वो ताकत का मजारा होता है जी।
पर पर बैसाखी जैसे आयोजन में जहां खालिस्तान के नारे लगते हैं, इस आयोजन में स्थानीय सांसद और कनाडा के राजनीतिक दलों के नेता सांसद भी हिस्सा लेते हैं। तो वहां के स्थानीय नेताओं को क्या उन्हें खालिस्तान के अलगाववादी आंदोलन के बारे में पता नहीं है, या फिर वो इसे मान्यता देते हैं? सवाल ये है कि अलग खालिस्तान का जो मुद्दा भारत में नहीं रहा, वो कनाडा में रहकर कैसे जिंदा हो जाता है? गुरप्रीत सिंह,
खालिस्तान की मूवमेंट अल्टीमेटली जब पंजाब में ही दम तोड़ चुकी है, तो बाहर से सिर्फ उनका प्रोपेगंडे के लेवल पे ही काम चल रहा है। कोई शक नहीं कि यहाँ पे गुरुद्वारों में उनका कंट्रोल है और कई पॉकेट्स में उनका कंट्रोल है उस सोच का, तो उसके चलते उनकी जो एक पावर है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। बब्बर खालसा के लीडर थे तलविंदर सिंह परमार, जिनका एयर इंडिया कांड में हाथ था और पंजाब में पुलिस मुकाबले में उनकी मौत हुई थी, उनको यहाँ पे ग्लोरीफाई किया जाता रहा बैसाखी में। जहां तक पॉलिटिशियंस का है, वो अपनी स्किन बचा लेते हैं ये कह के कि कम्युनिटी का इवेंट है, तो हम तो हर जगह जाएंगे क्योंकि हमें वोट भी चाहिए, लोगों तक पहुंचना भी है। तो कुछ हद तक ये सच्चाई है कि जब ऐसे इवेंट्स होंगे तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते।
कनाडा में बसे भारतीय सिख आर्थिक रूप से तो मजबूत हैं ही, राजनीतिक रूप से भी मजबूत हैं। तो कनाडा की राजनीति में वो कितना योगदान दे पाते हैं? वहाँ के राजनीतिक दल क्यों सिखों का साथ चाहते हैं? रचना सिंह हाल ही में ब्रिटिश कोलंबिया में एमएलए चुनी गई हैं।
मुझे लगता है कि सपोर्ट का कारण यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पता है कि हमारी संख्या कितनी ज्यादा है। सारी पार्टीज वो करना चाहती हैं सिखों को और इंडियंस को एज सच, और हम पॉलिटिकली काफी ज्यादा एक्टिव हैं, काफी ज्यादा महत्व देती हैं हमारी अचीवमेंट्स को भी। पर अचीवमेंट्स को महत्व देने का कारण भी आई थिंक कि बहुत प्रैग्मेटिक रहता है, कि उन्हें पता है कि इन टुडेज रियलिटी कि हम उनको कितना ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं।
मोहनलाल शर्मा, बीबीसी।
और अब आखिरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के शब्बीरपुर गांव में हाल ही में ठाकुरों और दलितों के बीच हिंसा हुई। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने शब्बीरपुर का दौरा किया। पेश उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट।
बहुत बुरा लग रहा जी, बहुत छोटे छोटे बच्चे सांझ के टाइम रोज पूछे मम्मी पापा मजदूरी पता क्यों नहीं आए, पुल पर मजदूरी करे करते तड़की चले जाते टिपल।
ये है सुनीता, इनके पति सुमित की हत्या सहारनपुर के शब्बीरपुर गाँव में 5 मई को दलित और ठाकुरों के बीच झड़प में हुई थी। सुनीता बता रही हैं कि उनके 2 छोटे बच्चे रोज उनसे पूछते हैं कि पापा मजदूरी करके कब घर लौटेंगे। सुमित रसूलपुर के एक ठाकुर परिवार के सबसे बड़े बेटे थे और वो मजदूरी किया करते थे। उनके चचेरे भाई भैरव कहते हैं,
बड़ा था तो सारी जिम्मेदारी उसी पे ही थी, छोटा छोटी जिम्मेदारी होंगी, अब बड़ा का तो बड़ी जिम्मेदारी होगी घर की सारी।
सुमित शब्बीरपुर अपनी मासी से मिलने गए थे। उनकी हत्या का इल्जाम दलितों पर आया है। कुछ दलित इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किए गए हैं। इसी गांव की मधु दलितों पर हिंसा का इल्जाम लगाती हैं।
जी वो उसकी महाराणा ने प्रताप की टीजे काट देते बच्चे, तो चमार का था वो प्रधान, उन्हें ना काटन नहीं दिया तो मैं बच्चे उल्टे लेके चले गए। दरोगा उनके साथ में था तो उस पर पत्थर वार करा चमारियों ने।
अभी जख्म ताजा ही था कि 23 मई को दलितों और ठाकुरों के बीच एक और झड़प हुई। 19 वर्षीय आशीष की हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी। मई के महीने में शब्बीरपुर गांव में दलितों और ठाकुरों के बीच 3 बार झड़पें हुई हैं। दलितों के कई घर जला दिए गए हैं, इनमें से एक शिवराज का घर था।
विश्वास यह है इस हालत में चलता है जाना ही पड़ेगा यहाँ से, या धर्म छोड़ना पड़ेगा। हमारे लिए तो ये हो रहा है, हिंदू काटते हैं चमार समझ गए और मुसलमान काटते हैं हिंदू समझ गए, तो हम तो कटते कटते हैं।
आखिर दलितों और ठाकुरों के बीच झड़पों का सिलसिला शुरू कैसे हुआ? दरअसल हुआ ये कि 5 मई को शब्बीरपुर के पास शिमलाना गांव में महाराणा प्रताप जयंती का आयोजन था। इस आयोजन में शामिल होने के लिए शब्बीरपुर गांव से कुछ ठाकुर शोभा यात्रा निकाल रहे थे। ठाकुरों का आरोप है कि दलितों ने इसे रोक दिया और पुलिस बुला ली। हिंसा दोबारा न भड़के इसके लिए सरकार ने पुलिस की भारी संख्या शहर में तैनात कर दी है। दोनों समुदायों के बीच बातचीत के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है। ठाकुरों के पास जमीनें हैं, दलित उन जमीनों पर मजदूरी करते हैं। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन फिलहाल इन दोनों का एक दूसरों के मोहल्लों और घरों पर आना जाना बंद है। जुबैर अहमद, बीबीसी, शब्बीरपुर, सहारनपुर।
और कार्यक्रम के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। काबुल में आज हुए धमाके में 80 लोगों की मौत हो गई। रूसी नौसेना ने सीरिया के पलमायरा के करीब आईएस के ठिकानों पर 4 क्रूज मिसाइल दागी हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है। बीबीसी समाचार।
शुक्रिया वात्सल। इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दे अनुमति। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी कल सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत में।